फिर इसी तरह शुक्र से क्या खैर और बरकत मिलती है। इब्राहिम आयत 7 में वही बात, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम वलाइन कफर तुम इन्ना अजाब इला शदीद। हजरत रबी बिन अनस कहते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे को याद रखने का वादा करता है जो इसके जिक्र में रितबुल लिसान रहे, यानी जो उसका जिक्र करे, और इस शख्स को मजीद अदा करने का अहद करता है जो इसका शुक्र अदा करे, और इस शख्स पर अजाब मुसल्लत करने की वार्निंग देता है जो नेमत की नाकदरी करके कुफराने नेमत करे। बहुत ही खूबसूरत नाम है, दो लिखिएगा। असलाफ कहते हैं कि शुक्र के दो नाम है, अल हाफिज, हिफाजत करने वाला, यानी पिछली नेमतों की हिफाजत करता है, और अल जालिब, जालिब कहते हैं खींचने वाला, और नेमतों को खींचता है। मिकनातीस होता है ना, तो वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है। कहते हैं जो बंदा शुक्र करेगा ना तो उसकी नेमतें महफूज हो जाती हैं, और जो शुक्र करता है तो और नेमतें भी चुन चुन के उसकी झोली में अल्लाह तला डाल देता है। और यही बात किसी शायर ने भी कही। एक और बहुत ही खूबसूरत बात है शुक्र के नाते से, ये मुझे जब मैंने पढ़ी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने पहले कभी इस पर गौर नहीं किया हुआ था, और वो क्या है कि शुक्राने नेमत को अल्लाह ने अपनी मशीयत के साथ नहीं रखा। मशीयत क्या आती है? अगर अल्लाह चाहे, समझिएगा इसको। मसा आप देखिए कि अल्लाह ताला ने सूरत अनाम 41 में क्या कहा, बली या तदू न फयक्शिफु मा तदू न इलैही इनशा, इन शाह को हाईलाइट कर ले, ये है मशीयत। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उसको पुकारो तो वो तुमसे दूर कर देगा जिसकी तरफ तुम उसे पुकारोगे, इफ ही वांट, इफ ही विल। इस तरह बख्शिश के बारे में सूरत आले इमरान 129 में क्या आता है, यग़फिरु लिमन यशा, अल्लाह बख्शेगा जिसको चाहेगा, है ना ऐसे। और सूरत बकरा 212 में रिस्क की बात क्या की, वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा, जिसको चाहेगा रिस्क देगा। सूरत तौबा 15 में आता है वयतूबुल्लाहु अला मन यशा। यहां तक आपने हर नेमत के साथ क्या सुना, मन यशा, जिस पे अल्लाह चाहे। लेकिन जहां शुक्र की बात आई, वसनजज़ी शाकिरीन, वन करीब शुक्र वालों को देगा। आले इमरान 145 और 144 में ये बात आ गई, ये नहीं कहा सयजज़ी शाकिरीन इंशा। कितनों को बात समझ आ गई है, समझ आई है ना, यानी शुक्र करने वाले के साथ अल्लाह की मर्जी नहीं चलती, बस उसको मिलेगा, ये मुराद है। फिर इसी तरह शुक्र की एक और अहमियत क्या है कि शुक्र करने वाले को अपने औसाफ करीमा से मौसूम किया, यानी अल्लाह का अपना नाम है ना अश्शाकिर अश्शकूर, अल्लाह ताला ने जो नाम अपने लिए पसंद किया वही शुक्र करने वाले को शाकिर और शकूर का भी दे दिया। फिर एक बहुत बड़ा फायदा है, ये तो मेरा दिल था कि मैं पूरा ही आपको पढ़ के सुना दूं, कि शुक्र करने से दुआएं कबूल होती हैं। इब्राहिम बिन अदम से किसी ने शिकवा किया, हमें क्या हो गया समझ में नहीं आता, हम दुआ करते हैं मगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। है किसी का ये गिला कि अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता? जवाब देते हैं, तुमने अल्लाह की मार्फत हासिल करने के बावजूद इसकी इताअत और फरमाबरदारी से मुंह फेरा, सच के नहीं? रसूल को जानते हुए भी तुमने उनकी सुन्नतों की पैरवी नहीं की, है कि नहीं, बोलिए। ऐसे ही है ना, अल्लाह को जानते हैं उसका हक नहीं देते, रसूल को जानते हैं पैरवी नहीं करते, कुरान को तुमने बखूबी समझा लेकिन उसको अपनी जिंदगी में अमल में नहीं लाते। नेमतों से लुत्फंदोज होने के बावजूद तुम्हें शुक्र की फुर्सत नहीं है। जन्नत को जानते हो मगर जन्नत नहीं मांगते। जहन्नुम के बारे में इल्म है मगर फिर भी इससे दूर रहने की कोशिश नहीं करते। शैतान के बारे में तुम्हें पता है लेकिन उससे अपने आप को बचाने के लिए कोशिश नहीं करते, तुम तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर करते हो। और मौत के बारे में पूरा इल्म रखने के बावजूद तुमने इसकी तैयारी की तरफ तवज्जो नहीं की। और मुर्दों को तुम अपने हाथों से दफन करते हो लेकिन इनसे इबरत नहीं लेते, और अपने ऐब और नक्श छोड़कर दूसरों के ऐब और नक्श तलाश करना तुम्हारा मशगला बन गया, तो कहां से तुम्हारी दुआ कबूल हो। है ना लिखने के काबिल बात, वही बात है कि एक बात कही कि अल्लाह मेरी दुआ नहीं कबूल करता, अल्लाह की शिकायत लगाई ना, तो पीछे 20 चीजें अपने ही ऐब की खुल गई। बाज दफा लोग अपना ही को मसला खोलते हैं, पता चलता है कि ऐब सारा या कसूर सारा उनका अपना ही होता है। लोगों में से किसकी कदर करें, अब आखिरी टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है ये जिनको बस हम वाइंड अप कर रहे हैं। अल्लाह का तो करना ही था, अभी तक जितनी बात हुई है ना ये शुक्र बिल्लाह की बातें थी, अब देखते हैं शुक्र बिन नास, और ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बहुत सारे लोग अल्लाह के साथ तो किसी ना किसी हद तक शुक्र कर ही लेते हैं, बंदों के साथ क्या, सबसे पहले वालदैन। سورہ لقمان آیت 14، انشکر لی ولی والدیک، اور اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے. ہے کسی کو شک؟ آج کی نسلوں کو شک ہے. ایک ماں نے کہا کہ میں نے اپنی بچی سے کوئی بات کی کہ بیٹا تمہیں پیدا کیا، پالا بڑا، تو کہتی نہ کرتے، اٹ واز یور پلیئر. ہم نے کب کہا تھا میں پیدا کرو؟ یعنی اب اتنا بولڈ ہو گیا بچہ کہ ماں کو کہتے نہ کرتے پیدا، یہ آپ کی اپنی خوشی تھی. ہم نے کب کہا تھا کرو؟ تو یہ یاد رکھیے، مادر پدر آزاد ماحول ہوتے ہیں نا، کہ لوگ بچوں سے ڈرنے لگے اور بچوں کی پولیس کے ڈر سے بچوں کو کچھ نہ کہیں، تو یہی تحفے ملتے ہیں. تو ماں باپ کی بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر اس کے بعد نمبر ٹو، کس کی؟ ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ نیکی کرے. کبھی کی ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی؟ تو کبھی نہ بھولے. یاد رکھیے، بڑے ناشکرے لوگ ہیں جو کسی کی پرانی نیکی کو بھولنے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص انعام و اکرام سے نوازا جائے اس کو چاہیے کہ حسب قدرت اس کا شکریہ ادا کرے. یعنی کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، کوئی آپ کی عزت کرتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے، دے سکے تو اس کو بدلے میں کچھ دے. کچھ نہیں ہے نا، تو محسن کی تعریف و توصیف ہی کر دے. اور جس نے اپنے محسن کی تعریف کی، گویا کہ اس نے احسان کی قدر شناسی کی، اور جس نے محسن کے احسان کی تعریف بھی نہ کی، اس نے احسان کی ناقدری کی. بات واضح؟ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ دینے کی قدرت نہیں تو جزاک اللہ خیرن کہہ دیا کرو، یہ شکر گزاری کا ایک وسیلہ بنے گا. عربی محاورہ، جو اپنے ہاتھ پیروں سے محسن کے احسان کا بدلہ چکانے سے قاصر ہو، اس کو چاہیے کہ زبان کے اس لوتھڑے کو حرکت دے اور شکریہ کے کلمات کے ذریعے اپنے محسن کی دل جوئی کرے. یہی وہ بات ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا حق نہیں دیا، شکر نہیں ادا کیا، اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا. تحفے دیں، اور ایک اور بھی لوگوں کے ساتھ شکر کی بات کہیں کہ ان کے دیے ہوئے تحفے تحائف میں عیب جوئی نہ کریں. کیا دیا، کیا سمجھا؟ امام مناوی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ تحفے میں ملی ہوئی چیز کی عیب پوشی کی جائے اور اس کو حقارت سے نہ دیکھا جائے. تو اپنے لیے سوچیے، تین لوگ لکھیے بچپن سے لے کے آج تک، آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملے ہوں گے ماں باپ کے بعد بھی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہوگا، اور اگر آج بھولے میں، بعض دفعہ ہم نئی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، پرانے محسنوں کو بھول جاتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو سسرال ہی سب کچھ لگتا ہے، لیکن ماں باپ، بھائی بہن، بہت کچھ ہے. تین لوگوں کا سوچئے اور دعا کریں کہ اگر آپ نے ان سے کبھی رابطہ نہیں کیا، ہوتا ہی ہے نا کبھی انسان بھول جاتا ہے، تو اس خیال سے کہ فلاں موقع پہ آپ نے میری یہاں مدد کی تھی، فلاں سے یہ خیر ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اس میں پتہ سب سے اچھا کیا ہے؟ آپ کے اسکول کے ٹیچرس، جنہوں نے آپ کو اردو سکھائی. اردو سکھائی تو آج اردو لکھ رہے ہیں نا، میتھ سکھایا تو تبھی وراثت کے احکامات سمجھتے نا. تو کسی انسان کا شکریہ ادا کرنے سے پیچھے نہ ہو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہی بات، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے اس نے اللہ کا نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کی شکر گزاری اور بندوں کی شکر گزاری میں فرق کیا ہے. آپ سوچیں ذرا 3 سیکنڈ تک، فرق کیا ہوگا؟ ابھی پیچھے ہم نے اللہ کی تو بہت جوش سے پڑھ لی، تدلل ہے، خشوع ہے، عاجزی ہے، عبودیت ہے، یہ اللہ کے ساتھ جذبے ہیں نا ہمارے. بندوں کے لیے کیا ہے؟ دعا کرنا. عاجز نہیں بننا، لیکن اس کے لیے دعا کرنا. اور اسی طرح سے بندوں کے ساتھ کہے کہ برابری کا معاملہ کرنا. اللہ کا شکر یہ کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور جو آپ کے برابر لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے کہ آپ ان کو اسی طرح کی نعمت سے فیض یاب کر دیں. پھر اسی طرح سے یہ لکھتے ہیں کہ استاد، معلم، معلم نے اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اگر اس پہ شکر ادا نہیں کرتا تھا تو گویا کہ اس نے ناقدری کی. پھر آپ ایک اور سوال لکھیں، کیا پھر مخلوق کی شکر گزاری اللہ کی ناشکری ہو جائے گی؟ تو یہ نہیں ہے. آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کا شکر بندوں کے راستے سے گزرتا ہے. اب اپوزٹ بات پہ آ جائے، آپ نے کسی پہ احسان کیا، آپ کیا چاہیں لوگ آپ کے شکر گزار ہوں؟ سوال سمجھے؟ ابھی تک تو ہم نعمتیں پانے والے تھے تو شکر ہی شکر ہے. اب دوسرا سوال یہ کہ اب آپ نے کسی کو کچھ دے دیا تو آپ اس کے جواب میں کیا ملیں؟ تو کبھی شکریہ کا انتظار بھی نہ کریں. سمجھ آئی؟ دے دیں تو ختم، نعمت دی ختم، کوئی احسان کیا تو ختم. کیونکہ نبیوں کا ایک ہی جملہ تھا، لا اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. ایون تبلیغ جیسی کام اور زندگیاں انہوں نے اپنی لگا دی، لیکن لوگوں سے کچھ نہ تعریف مانگی، نہ شہرت مانگی، ना फूल मांगे, कुछ नहीं मांगते। ये अल्लाह के रास्ते की चीजें उधर ही कबूल हो, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा उलमा कहते हैं कि जो इस नीयत से आपको कुछ दे या एहसान करे कि उसकी तारीफ की जाए, तो बिल्कुल ना करें। और जब शुक्र देख लिया तो ना शुक्री पे चंद लफ्ज़ हैं, ये पढ़ लीजिए। ना शुक्री क्या है? कुफर की जिद है। अल्लाह ताला ने इससे बहुत डराया। उमर बिन अब्दुल अजीज का हाल क्या था कि जब अपनी नेमतों पे गौर करते ना तो फिर ये दुआ पढ़ते, बल्कि इनके बारे में आता है कि रात को बीसियों बार उठते थे। तो इनकी बीवी ने एक दिन इन्हें कहा कि आप क्यों बार बार उठते हैं? तो कहते थे कि मुझे खौफ आता है इस बात का कि क्यामत के दिन अल्लाह ने अगर मुझसे इन नेमतों के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि बादशाह भी थे। अब फिर अल्लाह ने इनको खिलाफत दी तो बहुत ही कुछ मिल गया, लेकिन सूख के कांटा हो गए थे। जिसमें मैं चुटकी भरो ना तो इनके जिल्द पे स्किन के सिवा कुछ नहीं था। दुआ क्या मांगा करते थे, दोहरा लेते हैं मिलके, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उबद्दिला नेमतिका कुफरा, कि अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह में आता हूँ कि तेरी नेमत को नशुक्री से बदल दो। औ अकफरहा बादमारी फतिहा औ अनसाहा फलसना बिहा, कि अल्लाह तेरी पनाह चाहता इस बात से कि तेरी नेमत की लज्जत और चाशनी को नशुक्री की करवाहट में बदल डालूं, या तेरी नेमत का इरफान नसीब होने के बाद इसकी नाकदरी का शिकार हूं और नेमत पाकर ऐसा खो जाऊं कि नेमत देने वालों को भुला दूं और उसकी तारीफ भी ना करूं। और ये आज कितना आम है, नेमतों में नेमत देने वाले को भूल जाते हैं, खुशियों में खुशियां देने वाले को भूल जाते हैं। फिर इस तरह मुसीबतों के वक्त पे कुफराने नेमत, सूरत हूद आयत 9, वलैन अज़क़्नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़ानाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर, अगर हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत चखाएं फिर इससे छीन ले तो बेशक वो यकीनन नाउमीद और बेहद नाशुक्रा होता है। तो अल्लाह ताला हमें दुखों और सुखों दोनों में ही नाशुक्रियों से बचा के रखे। सूरत हदीद 22-23 में भी बहुत ही खूबसूरत फलसफा है कि खुशियों में बहुत ज्यादा न बहक जाओ और गमों में मायूस न हो जाओ। सूरत आदियात आयत 6, इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूद, इंसान ना शुक्रा और ना लायक है, यानी अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करता। तो आज अब देखिए कि बाज दफा जब नेमत बहुत मिलती है ना, मसे एक शख्स उसको 1 लाख रियाल का नफा मिलता, किसी दिन 1 लाख की जगह 50,000 मिल गया, तो पूछे तो क्या कहते हैं, मंदा चल रहा है, डाउन हो गया रेट। पे क्या हुआ, 1 लाख की बजाय 50,000 हो गया, अभी भी बहुत है। लेकिन नाशुक्री होती है ये नफे में कमी को नुकसान समझना। और कहते हैं कि औरतों में ये बीमारी ज्यादा होती है कि वो नाशुक्री करती हैं, सब कुछ मिलेगा लेकिन जब कोई चीज उनको ना मिले एक दिन भी, तो क्या कहती हैं कि हमने तुमसे खैर नहीं पाई। अच्छा, मर्द भी नाशुक्री करते हैं, कितने लोगों का ख्याल, कितने लोग कहते हैं कि मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं। एक मर्द ने कहा, कौन कहता हूं कि मैं शादी के बाद बदल गया हूं, शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था, मुझे शादी के बाद भी शादी का शौक है, तो मैं तो कोई नहीं बदला है। तो मर्द नहीं बदलते। तो बहरहाल दुआ कीजिए कि अल्लाह शुक्र की तौफीक दे। और सबर और शुक्र में क्या फर्क है, सी सौ, एक है जो सबर है तो एक शुक्र है। दीन का आधा निसफ शुक्र है तो आधा सबर है, दोनों में से एक पे गुजर जाएं। अब एक सवाल करें कि आप क्या चाहते हैं, कि आप सबर करके जन्नत में जाएं कि शुक्र करके? जी बताइए, बड़ा खूबसूरत। और ये जुमला से मैं बोलती थी, लेकिन मैंने ये मतरफ बिन नजर जुबान से कॉल सुना, मैंने कहा इनको कैसे पता चला कि ये, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह मुझे शुक्र के रास्ते जन्नत में जाना है, सबर के रास्ते नहीं जाना। इनका जुमला सुन लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं कि मैं सेहत और आफियत और तंदरुस्ती के आलम में अल्लाह का शुक्र बजा लाऊं, ये मुझे ज्यादा पसंदीदा इस बात से कि मुसीबतों और गमों में गिरफ्तार होकर जमाने की गर्दिश की जद में आके सबर करूं। तो कौन सा रास्ता पसंद करना है, शुक्र। तो जब हम नेमतों में शुक्र करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सबर में डालेगा। नहीं, अब जब सबर पढ़ेंगे तो शुक्र आपको और भी ज्यादा समझ आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये ना कहा करें कि सबर दे, कभी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आजमाइश दे सबर मांगे, बल्कि ये कहा कि शुक्र दे। तो शुक्र करके नेमतों पे जन्नत में जाना ये ज्यादा खुशकिस्मती है मुसीबतों के वक्त पे सबर करने की निस्बत से। किसी ने पूछा अबू सहल से सबर और शुक्र के बारे में, कौन सा अफसल है? कहने लगे दोनों के दोनों बजाते खुद अपनी कैफियत के एतबार से बराबर हैं। ये और बात है कि शुक्र मालदारों का मिशन है और सबर तंग दस्तों की बैसाखी है। समझे? यानी सबर तो करना ही पड़ेगा, बैसाखी के बगैर तो आप चलते नहीं है, लेकिन शुक्र जो है वो तो फिर आपका मिशन है। और ये हम जब सबर पढ़ेंगे तो आपको जुमले ज्यादा समझ आएंगे। मुसीबत पे भी क्या कभी शुक्र करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अरब शायर का कौल है, मेरे नफ्स के लिए इसके मर्ज का राज फाश हो गया, तो इसने इसको मंजरे आम पर लाने से रूगरदानी का रवैया अख्तियार किया, और शुक्र और हम का दामन पकड़ कर इससे दिल खोल कर अपने गिले शिकवे बयान कर दिए। तो बस यह कि हर मुसीबत अपने पहलू में नेमत छुपाए होती है, ये याद रखिएगा। जो मुसीबतें आती हैं उसमें खैर है, बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो उसके पीछे क्या होता है? सेहत होती है ना। तो हर मुसीबत के पीछे अल्लाह ताला ने कोई खैर कोई लगाई होती है जो हमें वक्त पे नहीं दिखती। इमाम शुरैह का बहुत ही खूबसूरत कौल है, किसी इंसान को जो भी तकलीफ आती है ना उसके पीछे तीन तोहफे जरूर होते हैं। नंबर एक, जिस मुसीबत से वो दो चार है वो इसके दीन और ईमान के लिए कादेह नहीं है। आप लिख लें फिर मैं आपको समझाती हूँ। दूसरा ये कि वो इस इब्तला से भड़कर नहीं है जिससे वो दो चार था। और तीसरा ये कि मुसीबत तो लिखी हुई थी उसके नसीब में, आज नहीं तो कल तो पेश आना ही था। ये तो अल्लाह के हुक्म से वाकई हुई, तो गिला शिकवा कैसा? यानी तीन तोहफे क्या मिलते हैं? पहला क्या है कि अल्लाह ने उसको मुश्किल में डाला लेकिन ईमान नहीं छीना, ये मुराद है। रद्दो कदह समझते ना, ये वही लफ्ज है। फिर ये बात है कि इससे बड़ी मुसीबत नहीं आई। और तीसरी बात है कि अल्लाह की तकदीर समझकर बंदा उस चीज को समझ लेता है और फिर उसको वो चीज मुश्किल नहीं लगती। इमाम गजाली कहते हैं, जिस शख्स के इस बात पर ईमान ना हो कि मुसीबतें और इब्तला से दो चार होने का अजर व सवाब मुसीबत की शिद्दत और तलही से कहीं ज्यादा मीठा और शीरी है, तो इस शख्स से मुसीबत पर शुक्र अदा करने की तवक्को नहीं की जा सकती। वो कभी भी मसाइब और अलाम के गर्दाब में फंस कर शुक्र अदा नहीं करता। तो बात यह है कि जैसे खुशियों में और नेमतों में शुक्र है ना, तो आला तरीन दर्जा यह है कि गमों और तकलीफों और बीमारियों में शुक्र करना है। लेकिन अल्लाह का ये फैसला है, कलीलुम मिन इबादी शुक्र, सूरत सबा 13, मेरे बंदों में बहुत थोड़े ही बंदे शुक्र गुजार हैं। जितनी शर्म इस आयत को पढ़ के आती है ना, शायद ही किसी और आयत को पढ़ के आए। अल्लाह ताला शिकवा करते हैं कि बहुत थोड़े शुक्र करते हैं। सूरह बकरा 243, वलाकिन अक्सरन नास ला यशकुरून, क्योंकि जो चीज़ मुश्किल होती है वो सारे तो नहीं कर पाते ना। आम सब्जेक्ट सब ले लेते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट कुछ लोग लेते हैं। तो शुक्र का सब्जेक्ट बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, याद रखिए। सब्र आप पढ़ेंगे, सब्र निस्बतन आसान है, फितरत के करीब है ना। शुक्र मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है, इसलिए सब नहीं लेते, और जो लेते भी हैं वो पास नहीं होते। सूरह हूद में आता है, वमा मना माहु इल्ला कलील, बहुत थोड़े लोग उसके साथ ईमान लाए। फिर इसी तरह सूरह सबा 13, वकलीलु मिन इबादिय शुकूर, और सूरह स्वाद 24, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति वकलीलुम माहुम, वो बहुत थोड़े हैं। और आप देखिए कि इबलीस ने क्या कहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने कोई बात हो रही थी, तो किसी एक शख्स ने कहा कि अल्लाह मुझे थोड़ों में कर ले। कहा, थोड़ों में क्यों कहते हो? तो उसने कहा कि ए उमर, अल्लाह ताला ने थोड़ों की तो तारीफ की है। तो हजरत उमर कहते हैं कि तुमने सच कहा, और इब्लीस ने भी तो यही कहा था ना कि वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि मैं ज्यादा को शुक्र गुजार नहीं पाऊंगा। सूरत अल अराफ 17। यानी शैतान को भी ये पता था कि शुक्र बहुत थोड़े लोग कर सकेंगे। तो लिहाजा हम सब ने अपने आप को शुक्र गुजारी में लेके आना है। शैतान जो है वो नाशुक्रे बंदे पर बहुत जल्दी हमला करता है। और लिख लें, जहां कोई नेमत आप छोड़ेंगे शैतान कामयाब होगा आप पे नाशुक्री के रास्ते। नेमत की कदर छोड़े, शैतान आपको नेमत से दूर कर देगा। और कहते हैं कि अल्लाह की तारीफ करना शैतान को नाको चने चबवाने के बराबर है। जब आप शुक्र करते हैं तो शैतान बड़ा दुखी हो जाता है। और इमाम आलूसी कहते हैं, अल्लाह ने अपने वलियों में से सिर्फ दो की तारीफ की है, हजरत नूह और इब्राहिम की, और वो शुक्र की वजह से। हजरत नूह को भी कहा अबदन शकूरा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शुक्र के साथ ही कहा। सूरत बलद आयत 4, लकद खलकनल इंसान फी कबद, हमने इंसान को बड़ी मेहनत में पैदा किया है। तो इमाम हसन कहते हैं कि मेहनत क्या है? कि इंसान नफ्स के साथ मुजाहिदा करता है शैतान के खिलाफ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने शाकिर बंदों में बना ले। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.